গৌরাঙ্গ বলিতে হবে, পুলক শরীর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলিতে হবে, পুলক শরীর গৌরাঙ্গ হরি হরি বলিতে নয়নি বহে নীরা, হরি হরি বলিতে নয়নি বহে নীরা, হরি হরি বলিতে বহে নীরা, হরি হরি বলিতে নয়নি বহে নীরা, আয় তার চন্দে করুণা হইবে, আর তবে নিতাই চন্দে করুণা হইবে, আর তবে নিতাই সংসার বাসনা মোর মনে তুচ্ছ হবে, সংসার বাস সংসার বাসনা মোর মনে তুচ্ছ হবে, সংসার বাস বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, বিষয় ছাড়িয়া বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, বিষয় ছাড়িয়া কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন, কবে বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, বিষয় ছাড়িয়া কবে হাম হেরব বৃন্দাবন, কবে আম হেরব रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति रूप रघुनाथ कबे हम बुझब से गला पीरेती कबे हम बुझब से जुगला पी रूप रघुनाथ पते रहु मर आस रूप रघु रूप रघुनाथ पते रहु मरासु प्रार्थनाथ रही सदा मर तम दास प्रार्थनाथ प्रार्थनाथ रही सदा मर तम दास प्रार्थनाथ गौरंग बोलते हवे तुलक शरीर गौरांग बोलते हवे हरि हरि बोलते नयन बहे नीर हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम
बोलते हवे पुलक का शरीर जो गौरांग बोले सब पुलकित हो गया शरीर है गौरांग बोलते हवे पुलक का शरीर गौरांग ऐसा दुर्लभ अवसर कब आएगा जब गौरांग बोलते ही शरीर पुलकित हो उठेगा तथा हरि हरि बोल बोलने पर नयन से अश्रु बहने लगेगा यही जीवन का लक्ष्य है मायाप्रभु भी सब आप लोग गए होंगे तो देखे साधारण सब बोलते किस है कैसे गौरांग चार अक्षर है गौ गौरांग 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 किसका मंत्र कौन जपता था इसको हमेशा गौरांग 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 ये व्यक्ति था हमेशा जपता था कौन इसका इष्ट मंत्र ही था वो 24 घंटे इसको जपता था चेतन चेतन पढ़ते हैं ना हैं कौन जपता था हमेशा गौरांग 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 एक चीज 24 घंटा वो ऐसे गौरांग ही जपता था उसका और कोई मुख से दूसरा मंत्र कुछ नहीं आता कौन था शिवानंद से नहीं देखिए याद रखा हैं नकुल ब्रह्मचारी का शरीर में जब आवेश हो गए थे कौन भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको डाउट हो गया था किसको शिवानंद सेन को ये गौरांग महाप्रभु जैसे सब कुछ इसका कार्यकलाप सब अभिनय ऐसे ही करता था तो सब लोग बोलते थे महाप्रभु इसके शरीर में आवे सके लेकिन इसको डाउट हो गया किसको शिवानंद सर की जब पुरी में रहते महाप्रभु इधर कैसे आ गए वर्धमान के पास हैं यहाँ कैसे आ गए तो परीक्षा करने के लिए मन में सोच कर गया था यदि ये जब स्वयं गौरांग इसके शरीर में आवेश होंगे तो मेरा इष्ट मंत्र क्या है ये बोल देगा और मुझे मैं उसके पास जाए बिना वो मैं कहाँ पर हूँ मुझे बुला लेगा तो दोनों हो गया तो जाके छुप के रहे थे कि और नकुल ब्रह्मचारी उसको बुला लिए अरे शिवान जब ये भक्त बोला बोले कि जाओ ये शिवानंद सेन आया है और मुझे परीक्षा करना चाहता है छुपा हुआ उधर उसको बोला कि लाल और बोले और तुम्हारा डाउट है कि तुम तुम्हारा इष्ट मंत्र क्या बोलना है तुम्हारा इष्ट मंत्र चार अक्षर वाले गौर गोपाल मंत्र क्या गौरांग तुम 24 घंटे इसी को जपते रहते हैं सोने का समय में जागरण में बैठने उठने सभी समय तुम्हारे मुख में ये मंत्र तुम्हारा धारण करके रखे हो सब समय अंतकरण में हमेशा वो जप रहे, सोने के टाइम में भी वो ऑटोमेटिकली वो जप चलते रहता क्या? गौरांग 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 बोलते हवे पुलक शरीर, ये चार अक्षर गौरांग राधा कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण हम कहते हैं राधा कृष्ण, कोई राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जप रहा है और कोई गौरांग बोलता है, दोनों में अंतर नहीं है, है? राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि गौरांग बोलते हवे पुलक का शरीर, गौरांग बोलते ही जैसे हमारा शरीर पुलकित हो जाए हो जाएगा, रोमांचित हो जाएगा, आंख से अश्रु की धारा बहने लगेगा, यही तो जीवन का लक्ष्य है। ये हो रहा है, जब यह नहीं हो रहा तो फिर हम लोग अभी तक किस अवस्था में है? बद्ध अवस्था में है, बद्ध जीवन में है। जो श्लोक आज जो कह रहा है कि भगवान के कौन सा शक्ति द्वारा हम अभी तक कबलित हैं, हैं भगवान के पराशक्ति या अपराशक्ति, पराशक्ति में अपराशक्ति है, भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा कबलित है, इसलिए हमारा आंख से अश्रु नहीं बह रहा है। गौरांग नाम लेने पर भी कोई शरीर में किसी प्रकार की विकार नहीं आ रहा, आंख से अश्रु ना बह रहा, ना पुलकित हो रहा शरीर, ना रोमांचित हो रहा, ना कुछ हो रहा, ना कुछ आंख से अश्रु बह रहा, कुछ कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमें सब सिखाने के लिए आचार्य कहते कब उस दिन आएगा जब मैं गौरांग बोलते ही मेरे आंख से अश्रु की धारा बहने लगेगा, वो दुर्लभ अवसर कब आएगा जब गौरांग बोलते ही शरीर पुलकित तो उठेगा, हरी हरी बोलने पर नयन से नील बाश्रु बहने लगेगा, कब उस दिन आएगा? इसे आगे कहते कि उपाय क्या है, कैसे आ सकते हैं, स्थिति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसकी कृपा होने से? नित्यानंद प्रभु के, कभी हमें निताई चंदेर करुणा होइबे और संसार वासना मरो मन कबे तुच्छ हो। जब तक मेरी संसार के प्रति आसक्ति है, विषय को भोगने का वासना भरा हुआ है अंतकरण में, तब तो कैसे होगा? गौरांग बोलने पर भी हम बोल देते मुख में गौरांग, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं होता शरीर में, हमारे चेतना में कोई शुद्धि नहीं हो रहा है। इसलिए अभिताप हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? विषय में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ, संसार वासना इसमें भरा हुआ, कई प्रकार की मन में इच्छाएं हैं। क्लास में तो बैठ रहे हैं इधर, लेकिन मौन हमारा कहाँ? मौन और कहीं होगा, है घर में होगा, वह कहीं वो कहीं इधर कोई काम करते हो वो भी जाएगा, कहीं वहाँ पर मौन होगा, वह कहीं मौन घूम रहा है, मौन गौरांग के चरण में नहीं है, है सवई मन कृष्ण पदार, कृष्ण के मन में मन को निवेश करना ही लगे, लेकिन मौन कहाँ निवेश हो रहा है? मौन तो और कुछ प्लान तो अपना सोच रहा है। तो ये कहते कि संसार वासना कब नष्ट होगा, कैसे नष्ट हो सकता है? निताय चंद्र करुणा है, जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगा, अर्थात नित्यानंद प्रभु के वो आदि गुरु है, उनके जो प्रतिनिधि कौन है? सदगुरु, सदगुरु की कृपा होगा, अर्थात नित्यानंद प्रभु की हम डायरेक्ट तो उनकी प्रतिनिधि, इन्होंने इसलिए नियुक्त करके हमारे पास छोड़ दिए हैं सदगुरु को, तो उनकी कृपा होगा, पर नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही संसार की वासना विषय को भोगने का इंद्रिय तृप्ति की जो ये इच्छा है ये नष्ट होगी, ये तृप्ति का इच्छा संसार को भोगने की इच्छा नष्ट होगी। और जब तक उनकी कृपा नहीं होगा कहाँ से होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है, हम फिर वो जगाई माधाई के चेला बन के जगाई माधाई कैसे उद्धार हुए जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुआ है? लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते तो जगाई माधाई हईते आमिषे पापिष्ठ, पुरुष कीट हईते आमिषे लघिष्ठ। आप ऐसे सोचते हैं कृष्णदास कविराज जो कह रहे थे ऐसे ही नहीं कि वो ऐसे ही बोल दिए, नहीं इनको ऐसे ही अनुभव, सच्चे अनुभव उनके दिल में ऐसे ही हो रहा था, स्वयं को ऐसा ही समझते थे कि मैं इतने ही भाई कौन सा फर्क है, जगाई माधाई तो आपके नित्य पार्षद ही उनको उद्धार कर दिया था, कौन सा बड़ा बात हुआ है? जय भी जय थे, अभी तीन जन्म आए थे, क्या क्या बन के हिरण्य को शिपु, फिर रावण को मुकर्ण, फिर शिशुपाल दंत वक्र को बनकर आए, और चौथे जन्म तो वो अपने स्वेच्छा से आए, वो आपका ही नित्य पार्षद है, इनको तीन जन्म के बाद तो जाना ही था आपके धाम में, और इनको उद्धार कर दिया, कौन सा बड़ा बात है? लेकिन मैं जैसा पापी को यदि उद्धार कर दोगे तभी पता लगेगा, आपके पति तपावन के नाम का सार्थक होगा। जगाए माधाई होते आमी से पापिष्ट, आप ऐसे सोच रहे हैं, आपको यदि कह देगा अरे तुम जगाए माधा है, जगाए माधाई के से भी और भी पापी हो, बोला है क्या बोल दिया मुझे, मैं थोड़ी जगाई माधाई की तरफ ऐसे रुक गया था, मैं तो कभी किसी को मर्डर नहीं किया, कभी किसी का शराब थोड़ी पिया हुई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि जगाई माधाई है ते हम इसे पापिष्ट, मैं उससे भी पापी हूँ। और ड्रेन में जो कीड़े चलते हैं, गंदे नाली में कीड़े चलते, उससे भी मैं घृणित हूँ। एहना निर्घुण्य के बाद निर्घुण्य के बाद दया करे एका नित्यानंद बिना जगत संसार है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ऐसे निर्घुण्य घृणित व्यक्ति बद्ध जीव में हूँ, जो ड्रेन की कीड़े से भी अधिक घृणित व्यक्ति हूँ, वैसे ऐसे ही निर्घुण्य व्यक्ति को कौन कृपा कर सकता है संसार में, केवल कौन, एक आशा है इसके प्रति, एका नित्यानंद बिना जगत संसार, ये संसार में और कोई नहीं, एकला नित्यानंद पर हुई कृपा कर सकते हैं। उसी बात को नरोत्तमदास ठाकुर यहाँ कहते कि कब कब हमें नित्याय चंद्र करुणा होगी, कब नित्यानंद प्रभु की कृपा मुझे होगा, अरे संसार के प्रति मेरी वासना है, सब विषय को भोगने का है, संसार को इंद्रिय तृप्ति की वासना, ये कब तुच्छ होंगे, इनकी कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है, सदगुरु की कृपा के बिना ये विषय के प्रति आसक्ति छोड़ने वाला नहीं है, ये सद आदि गुरु है और उनकी ही प्रतिनिधि सदगुरु है, इनकी कृपा के बिना संसार के प्रति विषय वासना छोड़ने वाला नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहते कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरी वो श्री वृंदावन, हम चले जाते टिकट काट के यहाँ से पहुँच जाए, बग में है कार है तो सब के गाड़ी है, नहीं तो कैसे भी हो पहुँच जाते वृंदावन, देख लिए वृंदावन घूम के आते हैं, कहाँ गए थे वृंदावन गए थे, वृंदावन दर्शन करके हो गया, वृंदावन दर्शन हो गया ऐसा, नरोत्तमदास ठाकुर कहते ऐसे ही वृंदावन दर्शन नहीं होता है, ऐसे जाओगे तो वृंदावन परिक्रमा किया लेकिन देखेगा गंदा नाली है, सो रहे कहीं रहे, और जमुना में देख रहे कि क्या दिल्ली का ट्रेन का पानी आ रहा है, यही सब देख कर केवल विकृत मुख करके और घूम घाम के आ जाओगे हम वृंदावन हो गया, ऐसे वृंदावन दर्शन नहीं होता है, इसको तो भगवान की बहिरंग शक्ति इसको आवरण की तरह कवर करके रखा है, किसको वृंदावन, वृंदावन है सब कुछ, वो सभी लोग थे वो देखते थे वृंदावन है, वृंदावन देखते राधा कृष्ण दर्शन का सब कुछ देखते थे, लेकिन हम जाते थे हमको दिखाई पड़ता क्या, ट्रेन दिखाई पड़ता है, सुअर दिखाई पड़ते हैं, बंदर दिखाई पड़ता, कुत्ता यही सब दिखाई पड़ता है, हमको वृंदावन नहीं दिखाई पड़ता है, सच्चे वृंदावन को देखना संभव नहीं होता है, इसीलिए न विषय साड़िया कभी शुद्ध हो मन, अब विषय में लगा हुआ मन ये शुद्ध नहीं हुआ, नित्यानंद प्रभु की कृपा सदगुरु की कृपा भी हमको मिला नहीं है, और हम वृंदावन को देखना चाहते, धाम अपराध के सबसे पहला अपराध है क्या, जैसे 10 नाम अपराध है जैसे 10 धाम अपराध है, सबसे पहला धाम अपराध क्या है, सदगुरु को अवज्ञा करके धाम में आना और धाम में निवास करना, जिनकी कृपा से आपको भक्ति में प्रवेश किए हो, धाम की महिमा जिनसे सुने हो, उस गुरु यदि नहीं चाहता कि आप धाम में रहो और गुरु के आदेश को उल्लंघन करके आप धाम में यदि रहोगे, ये पहला अपराध है धाम अपराध का, तो फिर कैसा होगा, अपराध के साथ में मुझे धाम में रहेंगे तो धाम आपकी कृपा नहीं कर, धाम के दर्शन नहीं कर पाते, और अपन में कई प्रकार के विषय वासना भरे हुआ है, नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होने से कैसे वृंदावन में दर्शन कर पाऊंगा, नरोत्तमदास ठाकुर कहते कि हैं, क्योंकि उनको उनको वृंदावन दर्शन हुआ, क्यों को नरोत्तमदास ठाकुर को बा श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी ये लोग वृंदावन को दर्शन किए, किए ना नहीं किए, साक्षात किए, जीव गोस्वामी कैसे वृंदावन दर्शन किए, इनको वृंदावन भेजा कौन, कौन भेजा, नित्यानंद प्रभु भेजे हैं, इनको साक्षात साथ में लेकर पूरा नवद्वीप मंडल परिक्रमा किए हैं, जैसे स्वयं नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को साक्षात साथ में लेकर नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराए, जिसको हम भी आज कर रहे हैं वही क्रम में है, नित्यानंद प्रभु जिस क्रम में जीव गोस्वामी को परिक्रमा कराए थे, परिक्रमा को नहीं तो नवद्वीप मंडल घुमाकर फिर उनको भेजे वृंदावन में, जाओ भी अभी तुम क्वालिफाइड बन गए, उनको क्वालिफिकेशन ऑलरेडी दिए हैं, वृंदावन दर्शन करने का क्वालिफिकेशन उन्होंने साक्षात नित्यानंद प्रभु से प्राप्त की, तो उसी प्रकार नरोत्तमदास ठाकुर जी भी ये भजन गाते ही भाग रहे थे वृंदावन दर्शन करूंगा, लेकिन विषय वासना जब तक नहीं जाएगा वृंदावन कैसे दर्शन होगा, तो मन में सब प्रकार इंद्रिय तृप्ति की वासना है, वृंदावन पहुंच गया लेकिन वहां से तो आजकल तो मोबाइल है, कहाँ मन आकर दिल्ली में होगा वा और कहीं होगा, कहीं घूम रहा तो कैसे वृंदावन दर्शन होगा। जब तक विषय में मन है तब तक वृंदावन दर्शन नहीं होता है। इसलिए कहते कि नारद दास ठाकुर, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम है रवश्री, कब मैं फिर वृंदावन को, सच्चे वृंदावन को दर्शन करूंगा, इस समय कब आएगा इस दिन। आगे कहते कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से तो विषय वासना नष्ट होगा, लेकिन फिर भी जब वृंदावन में आऊंगा, यदि रूप और रघुनाथ के चरण में मेरे प्रीति उत्पन्न नहीं हुआ है, नित्यानंद प्रभु ने यही बोले जीव गोस्वामी, तुम जाओ जाकर उधर क्या करो, रूप और सनातन रूप रघुनाथ के चरण में आश्रय करके रहो। जगदानंद पंडित भी आ रहे थे, कहाँ से, पुरी से वृंदावन, महाप्रभु मना करने पर भी थोड़ा अभिमान करके महाप्रभु के ऊपर आ गए, तो महाप्रभु कहे कि ठीक है तुम मानोगे नहीं, जाओगे वृंदावन, जाओ लेकिन कहाँ रहना, सनातन और रूप उन्हीं के साथ रहना, ब्रजवासियों के साथ मेला मिलजुल नहीं करना, उनसे बातचीत नहीं करना, दूर से रहना और प्रणाम करना, उनको सम्मान करना, दूर से रहकर ब्रजवासियों को प्रणाम करना, असंग करना केवल रूप और सनातन की, रघुनाथ की। इनकी जब तक कृपा नहीं होगा, उनकी चरणों के प्रति मेरे जैसे जब आसक्त नहीं होगा, तो किस प्रकार मैं जुगलों प्रति अर्थात राधा कृष्ण की प्रेम को व उनकी लीलाओं को कैसे मैं समझ पाऊंगा, इनके ऐसे ही संभव नहीं। अपने प्रयास से कोई किताब पढ़ लिया, किताब पढ़ के समझ गए, समझ गया, ऐसा नहीं होता है, पुस्तक पढ़ के नहीं समझ। जब तक हम किसी महाभाग वैष्णव की कृपा नहीं प्राप्त किए हैं, जो उन्होंने स्वयं कृपा करके हमारा यहाँ अज्ञान अति मेरा अंध से अज्ञान को समाप्त करके आपको दिव्य चक्षु नहीं देता, तो आप कहाँ दर्शन करोगे। ऐसे में नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि रूपो रघुनाथ पदे हो व्याकुति, कब उनके चरण कमल में मेरे ऐसे ही आसक्ति होगा, उनके चरण कमल को आश्रय करूँगा और इनके चरण कमल ही मेरे एकमात्र आशा है। किनके चरण कमल, हम डेली गाते हैं रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र डेली गाते ना, मंगलाचरण कहते हैं, इसके बाद तुरंत ही अज्ञानादि मिरंधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद क्या कहते, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स पदांतिकम। कौन का, कौन गाया इसको, इसको कौन लिखा, रचना कौन किया, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका के दूसरा श्लोक है। नरोत्तम दास ठाकुर जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, इसे दूसरे श्लोक ही है, वो रूप को स्वयं प्रणाम, पहले अज्ञान थे मेरा धन से कही कि वो रूप को स्वयं प्रणाम करते हैं, तो उन्होंने ही लिखा। तो यहाँ पर भी वही कहते कि रूप को स्वयं के चरण अरविंद को आश्रय करना है। रूप और रघुनाथ पदे हुई व्याकुति, रूप और रघुनाथ, रूप को स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी, ये दोनों के चरण आश्रित किए बिना कैसे पैदा है। चैतन्य चैतन्य प्रत्येक चैप्टर के अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे रहु मरो आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, इनके चरणारविंद में मेरे सबसे मति लगे रहे। तो इसलिए लेकिन ये रूप रघुनाथ, फिर रूप और एक रूप गोस्वामी की प्रणाम मंत्र भी है, अददान तृणंग दंतई एवं जाचे हे पुनः पुनः श्रीमत रूप पदाम्भुजौ धूलिश्याम जन्म जन्मनी। मैं दांत के दोनों दांतों के बीच में घास के टुकड़े हैं, तृण के टुकड़े को धारण करते हुए दंड संपूर्ण रूप में दंडवत प्रणाम करके भूमि में निपतित होते हुए बार बार मैं याचना करता हूँ कि मेरे रूप गोस्वामी के चरणारविंद के एक धूलि की भाई के धूल का कण बने रहूं, जन्म जन्मांतर मेरी एकमात्र इच्छा है रूप गोस्वामी को अनुसरण करना। इसको कौन कहा, अब जो रूप गोस्वामी जाओगे वृंदावन में तो उनके भजन पटल में दो मंत्र लिखा रहता, उनके प्रणाम मंत्र लिखा है, दो मंत्र लिखा गया, ये इसके नीचे फिर ये लिखा गया, इसको कौन गाया है, कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी। इस मंत्र को कौन गाया, तो ये दोनों का चरण अरविंद में आश्रय करने के लिए कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, लेकिन ये दोनों में से एक फिर कह रहा है कि नहीं दूसरे का, उसी का चरण को आश्रय करो। रघुनाथ दास गोस्वामी यदि वो प्रयोजन आचार्य माने जाते हैं, लेकिन वो कहते कि नहीं, मेरा एकमात्र ये अभिलाषा है क्या, जन्म जन्मांतर में रूप गोस्वामी के चरण के एक धूल की कण बने रहू, मेरे एक ही मात्र यही आशा है। श्रीमद रूप पदाम बुझो धूलिश्याम जन्म 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 जन्मांतर एक धूल की पड़ी कण बने रहू, क्योंकि रूपमंजरी है, रूप गोस्वामी साक्षात रूपमंजरी और उनकी कृपा की बिना राधा कृष्ण की लीला में किसी के प्रवेश नहीं है, फिर कोई सुनने कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए सबसे पहले रूप गोस्वामी कहते कि नहीं सर, यहाँ पर नर्तमन दास ठाकुर कहते कि हमारा जो कर्तव्य है विषय को, विषय की वासना को समाप्त करना पड़ेगा, संसार को भोगने की जो इच्छा है, हम ऐसे ही निर्गुण्य व्यक्ति है, जगाए माधाए से भी अधिक पापी है, और ड्रेन से कीड़े से भी अधिक घृणित है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे जैसे, ऐसे भावना को अपनाना पड़ेगा, खाली बोलना नहीं, इसको अंतकरण में जब हम इसकी अनुभव करेंगे, अरूप रघुनाथ पदे हो ही भी आकृति जो रोएंगे भगवान वैष्णव के चरण में, तो फिर वैष्णव कृपा करेंगे तभी तो हम राधा कृष्ण की लड़ाओं को समझ सकते हैं। ये नरोत्तमदास ठाकुर की कहने का ये प्रार्थना की सारांश है, ठीक है। हरे कृष्ण, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, चिंतामृत से पाठ मध्य लीला अध्याय 6 सर्व भट्टाचार्य की मुक्ति, इस अध्याय के आज 154 नंबर श्लोक है, 154। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। शब्दार्थ, विष्णु शक्ति भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति, परा आध्यात्मिक, प्रोक्ता कही गई है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ जीव, आख्या जानी जाती है, तथा तथा परा आध्यात्मिक, अविद्या अज्ञान, कर्म और सकाम कर्म, संज्ञा जानी जाती है, अन्य अन्य दूसरी, तृतीया तीसरी, शक्ति ही शक्ति, इष्यते मानी जाती है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक है, एक अन्य आध्यात्मिक शक्ति है जो क्षेत्रज्ञ या जीव कहलाती है, तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है जो जीव को ईश्वर विहीन बा निरीश्वर बनाती है और उसे सकाम कर्म से पूरित करती है। वे दोहराइए, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक है, एक अन्य आध्यात्मिक शक्ति है जो क्षेत्रज्ञ या जीव भी कहलाती है, तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है जो जीव को ईश्वर विहीन निरीश्वर बनाती है और उसे सकाम कर्म से पूरित करती है। तात्पर्य, भगवत गीता में क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञों के विषय में कृष्ण की वार्ता में यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव क्षेत्रज्ञ है जो अपने कर्म के क्षेत्र को जानता है। भौतिक जगत में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूले हुए हैं, यह विस्मृति अविद्या कहलाती है। भौतिक जगत की यह अविद्या शक्ति सकाम कर्म के लिए प्रोत्साहित करती है। यद्यपि यह अविद्या शक्ति भौतिक शक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति है, किंतु यह जीवों को विस्मृति की अवस्था में रखने के निमित्त है। यह जीवों में भगवान के प्रति विद्रोह की भावना के कारण है। इस प्रकार जीव वैधानिक रूप से आध्यात्मिक होते हुए अविद्या शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। यह किस प्रकार होता है उसका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। आज के जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं इसकी वक्ता कौन है, कौन बोल रहे हैं श्लोक, आप क्रम में सुनकर आ रहे हैं प्रसंग है, गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, सर्वम भट्टाचार्य। सर्वम भट्टाचार्य कौन है, गौरलीला में कौन थे सर्वम भट्टाचार्य, बृहस्पति हैं, देवताओं की गुरु, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है हम जैसे, बृहस्पति है और भगवान स्वयं गौरांग महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण, वार्तालाप चल रहा है दोनों में, गौरांग महाप्रभु और सर्वम भट्टाचार्य। इन गौरांग महाप्रभु अब पहले श्रवण करके आए प्रसंग, किस प्रकार जब पुरी में जगन्नाथपुरी में महाप्रभु पहुँचे और सीधे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए पूरे अंत कक्ष में अल्टर में प्रवेश कर गए। आज तो आजकल तो सबको अलाव है, अलाव है कि नहीं, जगन्नाथपुरी में टिकट दो ऐसे ही 9 बजे के बाद 9:30 बजे दर्शन में सबको अलाव है, सुबह मॉर्निंग भगवान कोई भी पब्लिक भी कोई भी जा सकता है, पूरा अल्टर तक है, यही जगन्नाथ के चरण भी छुँ से 100 रुपया दो पंडा को चरण छुआ देगा। तो लेकिन महाप्रभु उस समय गए सीधे जगन्नाथ जी को देखे, बोले तो जब आते थे दूर से ही वो चंदनपुर गांव से वहाँ से उनको दिखाई पड़ता बाल गोपाल मूर्ति जगन्नाथ मंदिर के ऊपर को जो पताका में दिखाई पड़ता वहाँ तो भागते भागते आए, पछाड़ खाते खाते वहीं से पूरे है बार बार गिरते थे फिर उठते थे, फिर आमे से दर्शन कर जगन्नाथ कैसे दर्शन करना गौरांग महाप्रभु ने सिखाया, स्वयं भगवान कैसे दर्शन कर रहे थे वहाँ से 10 किलोमीटर पहले 10-12 किलोमीटर पहले से वो ऐसे पछाड़ खा खा वहाँ वो दिखाई पड़ रहे थे उनको जगन्नाथ जी ने पताका पति तपावन बना उसको कहते हैं पति तपावन बना जे जारना इसके नाम पति तपावन बना है, वो पताका को देखते ही पतितों की उद्धार हो जाता है, नीला चक्र है देख नीला चक्र के ऊपर वो पताका उड़ रहा है। वहाँ देखकर महाप्रभु ने वो श्लोक कहे बोले कि अरे मेरे को बाल गोपाल स्वागत बोला रहा है, दिखाई पड़ रहे थे चक्र में वो पताका में कौन दिखाई पड़ रहा था, बाल गोपाल किशोर मूर्ति है, किशोर मूर्ति बाल गोपाल दिखाई पड़ रहे थे उनको देखकर वहीं से ही दंडवत किए तो पछाड़ खाते खाते बस वहीं तक आए पूरी तक पूरे मंदिर तक आए, बार बार गिरते थे फिर उठते थे और तो कोई था नहीं, सब पीछे रह गए थे दंडभंग की बात, नित्यानंद प्रभु ने उनके दंड तोड़ दिया, बोले कि फिर मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊँगा, डिसाइड करो मैं अकेले जाऊँगा नहीं तो तुम लोग कहवा अकेले जाओ अलग जाओ, मैं तो आप लोग के साथ में नहीं चलूँगा, इसलिए वो लोग कह दिया थे मुकुंद और कह दिया कि ठीक है महाप्रभु आप आगे जाइए आप हम पीछे जाएंगे, इसलिए अकेले आते थे और कोई था नहीं साथ में, अकेले ही जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए महाप्रभु अकेले ही भागे, पछाड़ खाते खाते रोते रोते हैं आंख से अश्रु धारा बहता था, पूरे धूला में लथपथ हो रहे थे ऐसे ही कड़ागड़ी देते हुए प्रणाम करते हुए वहीं से, ऐसा स्थिति हो रहा है किसका हो रहा है, कोई हो रहा है ऐसा, कुछ होने वाला नहीं ऐसा, लेकिन महाप्रभु ने सिखाया जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करना है, स्वयं कृष्ण है तो उन्हें सिखा रहे अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए आचरण करके सिखाए कैसे जगन्नाथ के दर्शन करना है, वहाँ से रोते 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 यहाँ पछाड़ खाते खाते महाप्रभु सिंह दर्जा पर पहुँचे, अंदर गए जगन्नाथ जी को देखे गरुड़ के पीछे जगन्नाथ जी को देख कर आओ भागे सीधे आलिंगन करने के लिए, सही तो प्राण नाथ पाइनु जहाँ लागी मदन दहने झुरी गेन, क्योंकि राधा भाव को आस्वादन कर रहे थे कृष्ण है लेकिन कौन सा भाव को आस्वादन कर रहे थे, सोचते थे कि मैं राधा रानी अपने को भक्त भाव राधा रानी के भाव को आस्वादन कर रहे थे, राधा या प्रणय माधुरी कितनी सेवा नहीं हुआ कैसे हैं राधा रानी की प्रणय माधुरी, हाँ राधा भाव से भावित होकर भागे जगन्नाथ जी को आलिंगन करने, सही तो प्राणनाथ पाई वही प्राणनाथ को प्राप्त किया हुए जहाँ लागी मदन दहने झुरी गेनू, जो मेरे राधारानी जैसे सोचती थी मेरे कैसर बाद जौवन की प्रारंभ अवस्था में जिनके लिए मैं दिन रात रो रहा था वही प्राणनाथ है सामने, भागे सीधे आलिंगन करने के लिए पूरे जंपिंग के एकदम अल्टर में जब आलिंगन करे इतनी ऊपर जगन्नाथ बैठे हुए थे, अब देखे रत्न में कितनी इच्छा है सीधे जंपिंग करे थे लेकिन वही पछाड़ खा के वहां तक पहुंच नहीं पाए जगन्नाथ, लेकिन नीचे गिर कितने जोर से गिरे होंगे, लोग तो सोचते कि गया सो ये हड्डी बड़ी सो क्या हो गया, गया सो चूट चार हो गया, लेकिन कुछ नहीं हो। हाँ तो पंडे लोग जो खड़े थे तो अज्ञान लोग थे, लाठी भट्टी लेकर आ गए मार, लेकिन वो सर्व मठाचार्य जी उनको रुके थे, सर्व मठाचार्य जी वहाँ पर थे उपस्थित थे, क्योंकि उनके शरीर का जो अंगों को लक्षण को देख रहा था, देखिए कि ये तो महाभागवत वैष्णव के समस्त लक्षण उनके शरीर में हैं, एक महा महापुरुष के लक्षण हैं, शास्त्र के आधार पर शास्त्र के पंडित थे कौन सर्व मठाचार्य। ओ सो देखे सारे अंग लक्षण देखकर बोले कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, आजान लंबी तो भुजो कनका अवधा, तो इनके ऐसे सारे लक्षण को देखे, आंख पूरा कवल की पत्ते की पकौड़े की तरफ है, इतने लंबो इतनी भुजा इतनी घुंटन को स्पर्श कर रहा था नीचे उनके बाहू से पड़े हुए थे पछाड़ खा के, और इतनी सुंदर है गौरवर्ण गौरांग है, ये प्रभुत्व में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और राधा राधारानी के शरीर में, क्योंकि उनकी कांति राधा भाव द्युति सुबड़ी करते हैं, चोरी कर लिए कृष्ण, क्योंकि राधारानी के अंग की कांति और उनके भावना को, तो इसलिए कृष्ण फिर राधारानी को जब साथ में जोड़ देते तो उनका रूप के और अधिक मधुर हो गया, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के तो पड़े हुए थे सर्व भट्टाचार्य, इसलिए उनको रुक के पंडित उनको सब कहते मुच्छित होकर पूरा होश पड़े हुए थे समाधिस्थित होकर, तो उठा कर लेकर गए थे अपने घर में, आप लोग सुने सुबह सर्व भट्टाचार्य लेकर गए, और बाद में नित्यानंद और अन्य पार्षद सुबह आए, वो फिर भी खबर लेकर उनके घर में पहुँचे, लेकिन इनकी सर्व भट्टाचार्य की बहनों ही थे कौन गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद ये दोनों का पहले परिचय था। सर्व भट्टाचार्य के ओरिजिनल घर कहाँ पर, कहाँ से आए थे वो पूरी, कहाँ से आए थे सर्व भट्टाचार्य का ओरिजिनल घर कहाँ है, नवदी मंडल परिक्रमा कर रहे हो कहाँ है, विद्यानगर है, विद्या वाचस्पति उनकी भाई है, वहीं से आए थे पहले, महाप्रभु की लड़ाई भाग ये सब मैंने महाप्रभु की तरह अरेंजमेंट है, तो इसलिए वहाँ से आए थे, और वहाँ जब पहले थे वहाँ भी स्कूल खुली पढ़ाते थे विद्यानगर में, तो ये सब जानते थे उनको, मुकुंद आदि कई लोग जो वहाँ के नवदीप वासी जानते थे, इसलिए मुकुंद और जो गोपीनाथ आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि गोपीनाथ आचार्य जो है यही बड़ादेव विद्याभूषण बाद में बने, गोपीनाथ आचार्य बाद में जो नेक्स्ट लाइफ में कौन बन गया है, बड़ादेव विद्याभूषण बन गया है, और उन्होंने सुना था महाप्रभु और सर्व भट्टाचार्य के दोनों के बीच में जो बातचीत हो रहा था, महाप्रभु ने कैसे डिफीट किए थे इसको सारे आर्गुमेंट को, ये तो चैतन्य चैतन्य को विस्तार में दे दिए कृष्ण, लेकिन इसका डिटेल को सुने था कौन ने सुना था, गोपीनाथ आचार्य बैठ के सुने थे, महाप्रभु और सर्व भट्टाचार्य के बीच जो बातचीत चल रहा था, ये बृहस्पति और भगवान ने उसके आर्गुमेंट को खंडन करके जैसे मायावाद को सब खंडित हैं खंडन करके कैसे स्थापित किए थे इसको सुने थे, वही गोपीनाथ आचार्य फिर आए किस बन के बड़दे विद्याभूषण के रूप में, और आकर फिर गोविंद भाष्य लेकर वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किए हैं, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को भक्ति विनोद ठाकुर से ही बता देते हैं, तो इसलिए गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद कहे कि ये तो स्वयं भगवान है, ये बातचीत चलते रहा है, ये उनको कन्विंस करना चाहते थे सर्व भट्टाचार्य को ये कौन है, वो सोचता था कि यंग सन्यासी है, अरे ये 24 साल उम्र में इतनी कम उम्र में सन्यास ले लिया कौन, अरे इतने देखने में इतनी कंदर्प के समान, कंदर्प को भी पराभूत करने वाले इनके अंग कांति, इसका तो कभी भी कहीं फलडाउन हो जाएगा, कई स्त्रियाँ इनके पीछे पड़ जाएंगे, ये सोच रहा था कौन सर्व भट्टाचार्य, बोला इसको बचाना पड़ेगा, हैं बचाना पड़ेगा, ये 24 साल में सन्यास ले लिया, कैसे सन्यास धर्म पालन कर पाएगा, ये पालन करने के लिए चाहे प्रयास करे लेकिन सुंदरी रमणीय इसके सौंदर्य को देखकर उसके पीछे पड़ेंगे, तो इसको बचाना पड़ेगा, इसको नॉलेज देना पड़ेगा, जैसे उद्धव भी सोच रहा था किनको ज्ञान देने के लिए गोपी, तो ऐसे बड़ा सर्व भट्टाचार्य बड़ा सीरियस सोचते थे कि ये इतना कम यंग सन्यासी है, लगता है कि इसको इतने इसको सिखाना पड़ेगा अपना वेदांत, क्योंकि वो वेदांत के टीचर थे कौन, वेदांत के टीचर थे, सारे बड़े बड़े सन्यासी लोग आकर उनसे पढ़ते थे, पूरा भारत में जानते थे सभी लोग, एक सन्यासी था प्रकाशानंद सरस्वती कहाँ बनारस में, उसको भी पता था सर्व भट्टाचार्य के बारे में जानते, और बहुत बड़े बड़े सारा दुनिया से भारत से आते थे पढ़ाई करने के लिए, वेदांत के अध्ययन करने के लिए सर्व भट्टाचार्य के पास आते थे, एक टीचर उधर था बनारस में और एक टीचर था पुरी में, इनके पास पढ़ाई करने से आते थे, चाहे गृहस्थ आश्रम थे लेकिन सब ये महान विद्वान बृहस्पति थे तो आते थे, तो कहे कि तो ये कहते थे क्या इसको तो मैं बचाऊंगा, इसको तो वेदांत से पढ़ाऊंगा बैठा के, मेरे घर में आ गया और ये पहचान का भी सब परिचय मिल गया, ये जगन्नाथ पुरंदर की पुत्र है, हमारा पड़ोसी है, नवद्वीप से है, तो इसको मैं पूरा इसके संन्यास धर्म कैसे पालन होगा, लेकिन इसको थोड़ा ऊंचा भी उठाना पड़ेगा, सरस्वती या तीर्थ कुछ उपाधि होना चाहिए, कैसे भारतीय जो संप्रदाय है थोड़ा नीचे संप्रदाय, जो व्यांग मायावादी सन्यासियों की जो दशनामी सन्यासी होते जो सब है, जो भारतीय है ये जो टाइटल है जिनकी भारतीय पूरी जो टाइटल होता है सन्यासियों की, वो थोड़ा नीच श्रेणी की माने जाते हैं, और जो सरस्वती हैं वा तीर्थ तीर्थ सरस्वती सब हायर क्लास उच्च क्लास के माने जाते हैं सन्यासियों में। तो ये सही भारतीय के कुछ कैटेगरी से भारतीय के पास क्यों सन्यास लिया है, सन्यास लेना था तो थोड़ा उच्च कोटि से लेना था, किससे, कोई सरस्वती हो, प्रकाशानंद सरस्वती उधर था कि कोई और तीर्थ था, तीर्थ कोई ऐसे टाइटल, तो इसलिए इसको मैं पढ़ाऊंगा शास्त्र पढ़ाए कि इसका भी और संस्कार करके अरे ऊपर को उठा दूंगा इसको, हैं हाई क्लास सन्यासी बनाऊंगा ये, तो ऐसे भावना था। लेकिन गोपीनाथ आचार्य को और मुकुंद को अच्छा नहीं लग रहा था, बोले कि क्या क्या सोच रहा है, तो उसको कन्विंस करना चाहते थे कि तुम जिसको ऐसे साधारण सोच रहे हो, साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है, वो स्वयं भगवान है, लेकिन वो मानता नहीं था, कौन जो मानने वाला नहीं, वो हंसी उड़ा रहा था, और ये तो सड़ा और बिनो बहन ही थे, दोनों में थोड़ा मजाक भी होता है, अब गांव में देखे ना अपने जो कौन सड़ा था कौन बहन ही था, सरवंगड़ाचार्य साले थे और बहन ही था कौन, तो दोनों में तो से मजाक भी होता है, तो मजाक चलता था, कभी कभी गुस्से में भी गुस्सा आ जाता था ज्यादा विष्णु ने इनको गोपीनाथ आचार्य को कि क्या कह रहा है, इनको साधारण समझ रहा है, ये साक्षात भगवान है, शर्म बड़े हंसे बड़े रहा, अरे तू भगवान बोल रहा किसको भी है? तो मजाक चल रहा था, लेकिन बात में एक दिन चैतन्य महाप्रभु को शर्म भट्टाचार्य ने साथ में आकर लेकर गया, जगन्नाथ जी को दर्शन करके आए, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के आने के बाद अपने घर में आसन में देकर बैठाया, किनको महाप्रभु को आसन दिया बैठने, महाप्रभु बैठ गए तो वो सामने बैठा कर आप वेदांत पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शर्म भट्टाचार्य अपने बैठ खोल के, क्यों समय भी हो गया, 9 बजे क्लास खत्म करना है, तो पढ़ के अपना पढ़ाना शुरू किया, अब पढ़ाना शुरू किया तो महाप्रभु सुनते रहे, हैं वो जैसे पूरा एकदम परफेक्ट स्टूडेंट है, बैठकर फुल अटेंटिव, लिसनिंग तो कई प्रकार के होता है, अटेंटिव लिसनिंग है, इन अटेंटिव, दोनों मिक्स फिर अटेंटिव इन अटेंटिव सब कई प्रकार के होता है, लेकिन महाप्रभु कैसे सुनते होंगे, पूरा अटेंटिव कुछ नहीं होते, एक पूरे ध्यान से हाथ जोड़कर पूरा विनम्रता से सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने गोपीनाथ आचार्य को बोले थे, बोले अरे वो बात्सल्य से मुझे प्रेम करता है कौन शर्म भट्टाचार्य, आप लोग उसको गलत मत सोचो, ठीक है वो पढ़ाने तो पढ़ना पढ़ लूँगा या पढ़ाता है, बैठकर सुने 7 दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया, 7 दिन सुनते रहे, कहाँ सुने थे आप, पूरी जाते तो जगह स्पॉट भी देखे ना, स्पॉट कहाँ पर देखे कोई है, शर्म भट्टाचार्य घर आज भी है पूरी में, वहाँ अंदर जाओगे तो शर्म भट्टाचार्य की सेवित जो शालग्राम में भी है, उधर दामोदर शालग्राम शर्म भट्टाचार्य पूजा करते थे, वहाँ पर बाद में गंगा माता को समय ने भी जाकर रही, वहीं पर सेवा करते, उनके रसिक राय के विग्रह भी उधर है, और उसके आगे आजकल आज भी ऐसे ही बना हुआ, जहाँ कहते कि हम मूर्ति बना गया शर्म भट्टाचार्य हैं, महाप्रभु मैंने बैठे हुए जब सिखाए और षडभुज रूप महाप्रभु उनको दर्शन दिए, मूर्ति बना हुआ उधर है, बाजू में एक ऐसा एक क्या सुड़ंग जैसे हैं गुम्फा जैसे, तो कहते कि इसी रास्ता था, ये रास्ता पूरा अल्टर तक गया जगन्नाथ मंदिर के अल्टर तक, और प्राचीन काल में जो शर्म भट्टाचार्य थे तो 500 साल पहले उन्होंने वहाँ से वहीं से अंदर से महाप्रभु को ऐसे बाहर से निकाल के उठा के ले आए थे, वहीं से अल्टर्स के अंदर से इसी रास्ता में वो अपने घर में आते थे, ये डायरेक्ट यहीं से अपने घर से मंदिर के अल्टर में सीधे से जाते थे, एक सुड़ंग है लोग दिखाते हैं, वहीं पर स्थान है, बैठा कर 7 दिन सुनाया था, कुछ पुथी ऐसे कपड़े में बांध कर रखे लोग दिखाने के लिए, क्या पुथी, यही पुथी पढ़ा रहा था कौन शर्म भट्टाचार्य महाप्रभु, 7 दिन सा जो बीत गया कोई बातचीत नहीं हुआ, शर्म भट्टाचार्य बोले कि अरे क्या कैसे स्टूडेंट है, बोले कि आप क्या सुन रहे थे, आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ नहीं लगा कौन, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं है, 7 दिन में बोला, 7 दिन आप तो हूँ कि ना को भी हूँ कि ना कि कुछ नहीं बोल रहे बैठकर पास सुन रहे हैं, तो बोले क्या है कुछ समझ में आ रहा है, मैं कुछ नहीं है तो समझ में नहीं आता तो कुछ प्रश्न भी होना चाहिए, कोई प्रश्न भी नहीं है, और चुपचाप बैठ रहे क्या कर रहे हो, समझ में तो बड़ा तंत्र में आ गया कौन क्या समझ रहे। तो फिर महाप्रभु ने मुख खोल के कहे कि समझ तो रहा हूं मैं, वेदांत सूत्र को समझ रहा हूं, लेकिन आप क्या बोल रहे हो उसको नहीं समझ पा रहा हूं, आप क्या बोल रहे हो उसको समझ नहीं पा, लेकिन वेदांत सूत्र तो मैं जानता हूं, जो जो महामुनि व्यास ने जो वेदांत सूत्र कहे, वेदांत सूत्र उसको तो मैं समझ रहा हूं, उसके अर्थ मुझे क्लियर है मेरे सामने वेदांत सूत्र, लेकिन आप इसका कैसे अर्थ कर रहे हो उसको मुझे समझ में नहीं, और आप इसको जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हो उसका अपना भाष्य, शारीरिक भाष्य किसका, शंकराचार्य के, तो उसको जो लाकर उसके क्या बोल रहे हो तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाष्य तो पूरा क्लियर है, व्यासदेव जी ने जो कहे वेदांत भाष्य वो क्लियर है, वेदांत सूत्र की साधनता वैष्णव लोग नहीं, वेदांत सूत्र की भाष्य के रूप में किसको मानते हैं, श्रीमद भागवत ही उसकी ओरिजिनल भाष्य, महाप्रभु ने कहा कि श्रीमद भागवत में ही वेदांत सूत्र की मूल ये भाष्य है, ये स्वयं जो भाष्य करता है, जो उन्होंने लिखा है वेदांत भाष्य, उन्होंने उसकी पूरा डिटेल जो टीका टिप्पणी श्रीमद भागवत के रूप में लिख कर गए व्यासदेव, इसलिए हमको दूसरा टीका जरूरत नहीं है, वेदांत सूत्र के अर्थ भी भागवत पूरा है, इसी का ही विस्तार है, लेकिन वो क्या बोल रहे थे सर्वों अपना समझा रहे थे शंकराचार्य की भाषा, वो जो आदि शंकर जो उन्होंने आए थे कि भ्रमित करने के लिए, भगवान ने ही भेजे थे शंकराचार्य को, जाओ जाकर संसार को ये मूर्खों को भ्रमित करो भाई, संसार कलयुग में जाकर इनको भ्रमित करना लोगों को, क्योंकि भ्रमित करके फिर वो उनको क्या पशु हत्या को रुकना था, बुद्ध देव ने आकर पशु हत्या को रुक कर गए थे कौन, और कहे थे कि वेद पुराण सब झूठा है, कह के चले गए थे बुद्ध देव, इसलिए तुरंत ही अहिंसा परम धर्म को स्थापना करना था, इसलिए कहते कि प्रच्छन्न बौद्ध उच्यते, जो मायावादी जो है ये बुद्ध धर्म माने ये महाप्रभु ने, ये तो इनसे भी अधिक घातक है, किनसे, जो बुद्धिस्ट जो मायावादी है ये बुद्धिस्ट लोगों से और भी घातक है, जो बुद्धिस्ट लोग तो कम से कम साफ 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 कह रहे कि नहीं हम वेद पुराण कुछ मानते नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, अहिंसा परम धर्म था, लेकिन जो मायावादी होते हैं ये कृष्ण अपराधी होते हैं, ये सीधा कहेंगे हाँ हम वेद को मानते पुराण को मानते सब कुछ मानते सबको मानकर बोल के फिर वो हम निरीश्वरवाद को स्थापना करना चाहते हैं, तो इसलिए ये बड़े अधिक बौद्ध से अधिक जैसे बौद्ध थे बुद्धिस्ट लोग से भी अधिक घातक ये लोग, इसलिए उन्होंने महाप्रभु ने उनको समझा रहे थे, सर्व भट्टाचार्य ने सॉरी सर्व भट्टाचार्य की बात उत्तर नहीं दिए, सर्वण पद महाप्रभु कहे कि मैं ओरिजिनल भाषा में क्या समझते, फिर बोलो आप कुछ क्या समझ रहे हो, आप कैसे समझ पा रहे हो बोला, तो महाप्रभु ने समझाते गए हैं, तो समय और सिर्फ दो चार मिनट है, तो इसलिए आज के श्लोक में पूरा डिटेल बोलना समय नहीं है, तो भगवान ने गौरांग महाप्रभु ने कह रहे हैं कि ये विष्णु कहाँ से कोट किए श्लोक, कौन सा पुराण से उद्धृत किए, विष्णु पुराण से उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रकृति में इसके पहले भी महाप्रभु ने कहा कि जो वैदिक शास्त्र जो कुछ जो बोता कि मायावादी में विश्वास नहीं करते, किसको विश्वास नहीं करते, पुराणों को विश्वास नहीं करते हैं, पुराण को विश्वास नहीं करते, ये सब बोलते हैं सब, बस शंकराचार्य ने गीता के ऊपर टीका लिखा लेकिन भागवत के ऊपर टीका नहीं लिखा, मायावादी कहते कि भागवत भी ये वैशंपायन ऋषि को ही लिखा था, व्यासदेव की कृति नहीं मानते लोग हैं, तो ऐसे ही वो लोग का, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने समझा ही जा रहे पुराण भी जरा कह रहे, लेकिन पुराण ऐसा नहीं है, वो भी उपनिषदों की व्याख्या करता है, पुराण जब जो उपनिषद को समझाने के लिए पुराण फिर इसको व्याख्या की गई है, फिर महाप्रभु ने समझाया कि जैसे ही जो ये शब्द प्रमाण है इसको जिन बिना युक्ति तर्क से स्वीकार किया जाता है, इसलिए श्लोक में भी आया था वो देखा गया कि क्या गोबर और जो उदाहरण दिया गया गोबर का और शंख का, महाप्रभु ने उदाहरण दिए शंख और गोबर, ये दोनों को पवित्र कहा गया शास्त्र में, तो सभी लोग मान रहे हैं, आप मायावादी मान रहे हो, मान रहे हैं ना ये दोनों पवित्र है, इसलिए कहा गया पुराणों में वेद में कहा गया है शब्द प्रमाण, इसलिए शब्द प्रमाण वेदांत सूत्र में जो कहा गया ये शब्द प्रमाण है, इसको एज इट इज स्वीकार करो, उसका पर आप भाष्य मत अपना इंटरप्रिटेशन मत जोड़ो, इसको समझाते हुए कहे कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं सड़ैश्वर्य पूर्ण भगवान है, एक व्यक्ति विशेष है, ये सभी शास्त्र में पुराण में कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं अहम सर्वस्य प्रभव अतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वजते माम बुद्धाभाव समन्विता अहम एवास्य वाग्रे नान्यत यत सत् असत्परां पश्चात अहम जेतताश्च जो वशिष्यत सोऽस्मि हम। भगवान कहे सारे गीता में सारे भागवत में पुराण में कई जगह पर उदाहरण दी गई। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है कृष्ण, एक व्यक्ति है, छह ऐश्वर्य से युक्त है, छह ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। ऐश्वर्य से समग्र से विद्य से जसस श्रिय ज्ञान वैराग्यम इति छन्न भगवणा, भगवान की ऐश्वर्य पूर्ण भगवान शास्त्र में कहा गया। और आप उनको लाकर कहाँ हिलाकर कहाँ उनको स्थापना करना चाहते हैं, ये कभी संभव नहीं है। और आप खुद ही जा रहे हो डेली जगन्नाथ जी की पूजन करने, फिर कहे कि भगवान ब्रह्म निराकार निर्विशेष है, तो इसको स्थापना करते हुए तुम इस प्रसंग में आते हुए महाप्रभु ने आचार्य कह रहे कि विष्णु पुराण से कोट करके कि भगवान विष्णु ये परम भगवान है और उनके तीन शक्ति है, अंतरंग बहिरंग और तटस्थ। भाई कहते कि परा प्रोक्त क्षेत्र अविद्या कर्म संज्ञा तृतीय शक्ति से, तो वो शक्ति तो पहला मैंने इनकी अंतरंग शक्ति है और दूसरा तटस्थ शक्ति है जो कि जीव है उनके दूसरे, लेकिन तीसरा शक्ति और एक है वो है बहिरंग जो कि तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। इसको इसका तो क्या कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं। और जीव को ईश्वर विहीन व निरेश्वर बनाने बनाती है और उसे सकाम कर्म में पूरित करती है। संसार के प्रति जो कर्म विभिन्न प्रकार के कठोर गधे के समान खटने का जीवात्मा को कौन लगाता है, ऐसे ही तमाम रजगुण के द्वारा प्रवृत्त करा के इसको घोर कर्म में ऐसे ही लगा देता है। कौन बहिरंग शक्ति जीव यदि भी आध्यात्मिक माना जाता है, जीव शक्ति जीव भी क्षेत्रज्ञ है, जैसे प्रभुपद कहते गीता में भगवान ने कहा है इसमें ईदन शरीर कौनते हैं क्षेत्र मिति विधीयते, ये शरीर के ही क्षेत्र है और इसको जो जानने वाला है क्षेत्रज्ञ है। दो क्षेत्रज्ञ है, एक तो जीवात्मा में क्षेत्रज्ञ, वो एक ही क्षेत्र के बारे में केवल जानता है अपने शरीर के बारे में, लेकिन दूसरा क्षेत्रज्ञ और है जो सारे क्षेत्रों के बारे में जानता है। 84 लाख जोनि में सब प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करने परमात्मा क्षेत्रज्ञ है, लेकिन ये जो छोटा क्षेत्रज्ञ है ये बहुत सूक्ष्म होता है। भगवान विशाल है तो ये इसको उदाहरण आप लोग पहले सुने हुए हैं, विशाल आदमी के जो है उत्साह और उसमें से कोई सूक्ष्म कणिका जीवात्मा उसी ममश जीव लोके जीव भूता सनातना भगवान के अंश है, सूक्ष्म कण है। तो इसलिए ये सूक्ष्म कण होकर लेकिन इसकी प्रवृत्ति जो एंजॉय करने का वो है, इसलिए वो माया को माया में माया को पकड़ने जाता तो माया उसको कबलित कर लेती है। भगवान को कबलित नहीं कर सकती है माया, लेकिन सूक्ष्म जीवात्मा को कबलित कर लेती है और फिर उसको बार बार कई प्रकार के कर्म ऐसे माने गर्हित कर्म करने से इसको प्रोत्साहित कर उसी में लगा देती है। इसी कारण से माया के द्वारा मोहित होने के कारण वो भगवान को भूल जाता है। कौन जीवात्मा है निकटस्थ माया तारे झापुड़िया धरे कृष्ण ते भोलिया जीव भोगवांछा करे। तो इसी बात को और आगे विशेष रूप में समझाया जाएगा, इस डिटेल एक एक करके फिर सर्वम भट्टाचार्य मैंने महाप्रभु कहते जाएंगे, इसको समझाते जाएंगे डिटेल आगे है। लेकिन आज इतना ही जानना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति विशेष है, उनकी तीन मुख्य शक्ति है अंतरंग बहिरंग और तटस्थ। और अंतरंग शक्ति महात्मा नुपार्थ दैवी प्रकृति आशिता, जो महात्मा लोग हैं तो दैवी प्रकृति भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीनस्थ होकर भगवान की सेवा में ही सब समय लगे रहते हैं। आज जो महात्मा नहीं है दुरात्मा है माया के द्वारा कबलित होकर तो फिर अपने इंद्रिय तृप्ति में कई प्रकार के भिन्न भिन्न कर्म में माया के द्वारा प्रोत्साहित होकर वो जन्म मुक्ति संसार में भटकते रहते हैं। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, ये स्वतंत्र नहीं रह सकती है, आइधर अंतरंग शक्ति के अधीन में रहेगी नहीं तो बहिरंग शक्ति के अधीन में रहती। ठीक है, समय हो गया, कोई किसी प्रश्न है समझाने के, मैंने ज्यादा इधर उधर हो गया समझ टाइम नहीं है। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है पंडित जी? और कोई पूछो भाई, कुछ पूछना चाहिए आपने हित नहीं तो दूसरों के हित के लिए है?
तटस्थता प्रकृति है, वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनली वैधानिक रूप से आध्यात्मिक शक्ति है।
वैधानिक
जीव जीवात्मा वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति है, तो वो अपने इन्फीरियर नेचर मटेरियल नेचर से कैसे आवृत हो जाती है?
मटेरियल नेचर में कैसा
जो माया है,
तो इसी को तात्पर्य प्रभुपाद अंत में लिखे कि ये अगले श्लोकों में समझाया जाएगा। श्लोक में टॉपिक नहीं है, अगला श्लोक में समझाया जाएगा, ठीक है, कैसे वर्णित होता है आस्ते आस्ते महाप्रभु समझाएंगे इसको आस्ते आस्ते। अगले श्लोक को जो पढ़ते रहोगे चित्रम चित्तवत में, ये प्रसंग पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हाँ बोलो।
हरे कृष्ण महाराज। भगवान पूर्ण चिन्मय है,
भगवान
पूर्ण चिन्मय है,
अध्यात्मय
चिन्मय है, तो वहां से भौतिक सृष्टि कैसे हो सकती है? चिन्मय में से भौतिक चीज कैसे निकल सकती है?
तो इसलिए सृष्टि कौन करता है? शंभु करते हैं। कौन करता है? शंभु। जैसे शंभुताम अभी तथा समुपैति कार्य भगवान, इसलिए डायरेक्ट माया को स्पर्श नहीं करते, तो अपने सृष्टि तत्व आप सब जानते हो, भागवत कैसे सृष्टि आता है, भगवान थोड़ी कुछ करते हैं। भगवान ही काम है केवल गाय चराना और गोपियों के साथ में नाचना, इसके अलावा दूसरे काम नहीं है उनके। भगवान केवल गाय चराते हैं, रास रास रचाते, यही है उनके, ये भगवान है आदि भगवान, ये है कृष्ण हैं, ये भगवान है, इनके केवल एंजॉय ही करना, आनंद उनको क्या लेना देना है सब, इसलिए वो कहाँ करते हैं, माई को स्पर्श नहीं करते, वो अपना जगह में रहते हैं। लेकिन वो विस्तार करके अपने अपने आस्ते आस्ते फिर तीनों विष्णु आ गए, फिर वो बहुत आगे सृष्टि कैसे हुआ, भगवान डायरेक्टली कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी इसी को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, और सब सभी के कारण है लेकिन फिर भी नहीं है, सर्व कारण कारण हम, सभी कारण कारण होते हुए भी सभी कारण कुछ कहीं उनको कुछ स्पर्श नहीं करता है। इसे हाँ क्या
शक्ति है जो ये भगवान से, भगवान की शक्ति है विष्णु भगवान की, और इसे स्वतंत्रता मिली हुई है कि ये चाहे तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहे या बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत, तो इसको इतना नॉलेज भी मिल रहा है, स्वतंत्रता भी है, और सब पता भी रहा है, इर्द गिर्द में देख भी रहे हैं कि इसका परिणाम ये है और इसका परिणाम ये है, और उसके बावजूद ये चतुर्थ शक्ति कौन सी है जो इसे मजबूर करते हैं, करने ही नहीं देते आने में।
दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान ने क्या कहा? दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम एव जे प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। जब तक वो भगवान के शरण में नहीं आएगा वो कहाँ से अतिक्रम करेगा है? भगवान कहते मैं मम माया, मेरा ही शक्ति है, सभी कारण के पीछे भी वही है, भगवान ही है, लेकिन आप शरण में नहीं आओगे तो कैसे रक्षा मिलेगी?
ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा सब?
तो शरण में नहीं आ रहे ना, भगवान कह रहे कि मेरी शरण में आओ, आने से फिर इसको अतिक्रम करोगे, तो अपने प्रयास से नहीं होगा, ये अपने प्रयास से नहीं कर पाओगे जब तक भगवान सहायता नहीं करेंगे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, कैसे उद्धार होगा, माया से बचने का क्या उपाय है, हैं? खाने जैसे नहीं भूल जाते हो, आपका शरीर को जो खाना नहीं भूल जाते, ऐसा ही नित्य भगवान को प्रार्थना करने नहीं भूलना। क्या प्रार्थना करना? प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे, हैं? प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी भी देखा, प्रभुपाद ने क्लास दिए, भागवत क्लास, कहे कि आप जितने सब क्लास में बैठे हो आप सब बहिरंग शक्ति के द्वारा मोहित हो, आप भगवान की माया शक्ति के द्वारा कबलित, लेकिन मैं मुझे भगवान की माया शक्ति कभी भी कबलित नहीं कर सकता। कौन कहा? सबने सोचा कि सही बात, प्रभुपाद शुद्ध भक्त है और प्योर लिबर्टी, उनके से माया कपड़ित कर, सही बात, लेकिन हम लोग माया ठीक है, लेकिन क्लास की बात में फिर प्रभुपा जी खड़े थे सामने, राधा लंडन सर के सामने कुछ प्रार्थना कर रहे थे, तो सेक्रेटरी तुम्हारे से महाराज बाजू में खड़ा होकर सुने क्या बोल रहे हैं प्रभुपा, प्रभुपा जी बोलते थे कि हे राधा कृष्ण, मुझे आपकी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से सदा बचा के रखिए, मैं कभी भी जैसे प्रभावित ना हूँ किससे, आपकी बहिरंग शक्ति के द्वारा है। तो ऐसे मैंने तो प्रभुपद आपको अभी भी कहे कि अभी क्लास में भाई कि आपको कभी भी बहिरंग शक्ति कबलित नहीं कर सकता, आपको उस अब माया से मुक्त हो, लेकिन अभी फिर हम सुनेंगे ऐसे ही प्रार्थना करें, प्रभुजी बोलते यही तो सेक्रेट है, यही सेक्रेट है, इसलिए बहिरंग शक्ति मुझे कबलित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नियमित प्रार्थना करता हूं प्रत्येक दिन, एक दिन भी गैप नहीं है। तो हम भूल जाते, कितना लोग प्रार्थना करते हो मंदिर में आकर के, माम गो को बचा के रखिए, प्रार्थना करते कोई राधा राधिका रमन को प्रार्थना करते कि मुझे आप बहिरंग शक्ति से बचा कर रखिए, प्रार्थना कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो फिर कैसे बचो हैं? इसको मत भूलिए, खाने के जैसे नहीं बोल, नियमित जिस समय में आप सोचते कि मैं माया से मुक्त हो गया हूं, उसी समय में माया आपको इतनी शक्तिवान है, भगवान कहते मम माया दुरत्तया, ये मेरा ही शक्ति है, थोड़े से अहंकार आ गया, मैं भक्ति में बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया हूँ, और मुझे किस नहीं हूँ, मैं अभी बहुत प्रोग्रेस कर गया हूँ, फास्ट श्रेणी के प्रथम श्रेणी के भक्त उत्तम अधिकारी बन गया हूँ। जो सोचता है सोचता ही अर्थात वो ऑलरेडी माया में है, माया उसको पकड़ लिया तभी तो बोल रहा है ऐसा ही। जो माया से मुक्त है वो हमेशा कहता कि मौसम अपतित प्रभु ना पाइबे, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे यार, जो उत्तम अधिकारी वैष्णव ऐसे ही सोचते हैं। जो हम कुछ घमंड आ जाएगा थोड़ा, तो जो घमंड में बोलते हैं कि मैं बड़ा प्रोग्रेस हो गया, फिर दम्भ के पर चलते हैं, बहुत शास्त्र पढ़ गया हूँ, बहुत सब कुछ जानता हूँ, हैं मेरा समान कौन जानता है, मौसम पंडित और कोई नहीं है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और अपना छाती फुला के चलेगा और साधारण लोगों की बात नहीं करेगा, क्या न्यू फैट लोग इनसे बात नहीं करता, फिर जो अंकल आएगा तो फिर समझ लेने की ऑलरेडी माया की तरह कबलित है, तब तो सोच रहा हूँ अहंकार आ रहा मन में। तो इसलिए नित्य प्रार्थना करने का रेगुलर, मैं बोल दिया लेकिन दो दिन के बाद भूल जाओगे हम पता है, प्रत्येक दिन रेगुलर प्रार्थना करोगे बच जाओगे, भगवान बचाएंगे क्या और कहीं नहीं बचाएंगे, भगवान जब तक नहीं कहेंगे कि जीवात्मा को छोड़ दो मेरे पास, मेरे पास, तो फिर वो छोड़ेगा नहीं तो नहीं छोड़ेगा है। और इतनी शक्तिमान है किसी को भी कवलित कर सकते, ब्रह्मा जी को कवलित कर, हम लोग कौन सा है, ब्रह्मा जी भाग गए अपने पुत्री के देखकर, भागे पीछे पुत्री के सौंदर्य को देखकर मोहित भागे, शंकर जी भाग गए हाँ मोहिनी को देखकर भागे, तो और कौन है, नारद जी भाग गए विश्व मोहिनी को देखकर, वो इच्छा हो गया उसको, ये शक्ति को कोई प्रभावित नहीं किया है भगवान की, ये शक्ति माया शक्ति केवल भगवान के ही कृपा से ही ये आयत होती है, भगवान चाहेंगे तभी, नहीं तो कोई नहीं, दूसरे कोई नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा राधिका रमण भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, गोविंदा की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।